समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी प्लेजेंट एंड लविंग वेलकम टू ऑल आर लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। मनोज, टिल लास्ट इवनिंग आई हैड अ फीलिंग दैट इट्स टाइम मे बी यू नो टू पुट अवे योर क्विल्ट्स, बट टुडे मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप एट अराउंड 3:30 टू कैच माय ऑफिस ट्रांसपोर्ट, आई रियलाइज्ड इट्स स्टिल लिटिल चिली। सो टाइम नॉट टू पैक योर वूलन्स माय डियर फ्रेंड्स, time still to take lot of good care of your health because winters has still not left us. But yes, of course, the beautiful flowers are still, you know, blooming. February indeed is a month of love.
Basant ritu hai, madam.
Absolutely. It's a month of bloom. So Manoj, let's take the program further, and yes, in the next 30 minutes we shall, you know, present to our listeners news both national and international, and of course there shall be metro city updates as every day, and towards the end of the program the most important, rather the most interesting segment of Aaj Savere, wherein we shall share historical information related to today's day, that is 20th February. So without much ado, let's begin the program with the news.
श्रीमती रेखा गुप्ता आज नई दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक में कल नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल आज दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने 1992 में ABVP के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। आयोजन के दौरान यातायात को प्रबंधित करने के लिए कुछ परिवर्तन और प्रतिबंध लागू रहेंगे।
धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। ये हर बहन के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को भी शीर्ष नेतृत्व तक जाने का मौका मिल सकता है।
After the announcement of Rekha Gupta's name as next Chief Minister of Delhi, several BJP leaders, including Home Minister Amit Shah and other union ministers, have congratulated her. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that he has full faith in Rekha Gupta. He added that BJP's new Chief Minister in Delhi will work with dedication in the direction of the resolution taken by Prime Minister Narendra Modi to make Delhi one of the top capitals of the world. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also congratulated Mrs. Gupta. In a social media post, Mr. Vaishnaw wrote that he looked forward to working with her on developing IT ecosystem and railways in Delhi under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Outgoing Delhi Chief Minister Atishi and AAP National Convener Arvind Kejriwal have congratulated Mrs. Gupta on being elected as the new Chief Minister and expressed hope that she would fulfill all promises made during the election campaign.
दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता को नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करेंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को समाप्त करने के पश्चात भाजपा 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will begin a two-day visit to Johannesburg, South Africa from today to participate in the G20 Foreign Ministers Meeting, FMM. He is visiting at the invitation of Minister of International Relations and Cooperation of South Africa, Ronald Lamola. The External Affairs Minister's participation in the G20 FMM will strengthen India's engagement with G20 countries and bolster the voice of the Global South in this important forum. Dr. Jaishankar is expected to hold a few bilateral meetings in the margins of the Foreign Ministers' meeting.
9वीं एशिया आर्थिक वार्ता आज से महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जा रही है। एशिया आर्थिक वार्ता भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ट्रैक 1.5 वार्ता का हिस्सा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। वार्ता का विषय विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान रखा गया है। इस वार्ता में भू अर्थशास्त्र के प्रमुख समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, साइबर सुरक्षा की आर्थिक अनिवार्यताएं और हिंद महासागर क्षेत्र तथा ब्लू इकोनॉमी के पहलू शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य आर्थिक विखंडन की जटिलताओं को दूर करना और लचीलेपन तथा पुनरुत्थान के तरीकों की पहचान करना भी है। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 में देश विदेश के राजनीतिक नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे। अब खबरें महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कला कुंभ परिसर में आध्यात्मिकता और संस्कृति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नामक संगोष्ठी में महाकुंभ के महत्व और संदर्भों पर चर्चा हुई। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्य शिक्षाविद शामिल हुए।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्र के निदेशक टिम कर्टिस ने किया। इस अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद श्री कर्टिस ने अपने संबोधन में कुंभ का महत्व समझाया और कहा कि यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी 1923 से की जा रही है। श्री कर्टिस ने कहा कि कुंभ मेला दुनिया को एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में नई दृष्टि प्रदान करता है। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कुंभ के ऐतिहासिक पहलू का जिक्र किया और कहा कि कुंभ मेले का उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु हुआन सांग की यात्रा वृतांत में भी मिलता है। उन्होंने कहा कि माघ स्नान की परंपरा खगोलीय घटनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस संगोष्ठी का आयोजन राज्य के सांस्कृतिक विभाग और प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
Indeed, Manoj, this effort called the, Kumbhvani is a great effort by Akashvani to connect our listeners with this great event which is happening in our country. And, the Kumbh is a great reflect of art, culture, heritage and of course great spirituality all rolled in one. Moving on to the next story, and now we take you over to our correspondent for the updates from the world of sports.
In cricket, the 9th edition of ICC Champions Trophy kicked off with a bang as New Zealand thrashed defending champions Pakistan by a commanding 60 runs in Karachi last night. New Zealand's Tom Latham was adjudged the player of the match for his brilliant turn. Today, Indian team led by Rohit Sharma will take on Bangladesh at the Dubai International Stadium. The match will kickstart at 2:30 p.m. Indian time. Moving towards Women's Premier League WPL cricket, where Delhi Capitals defeated UP Warriors by 7 wickets at the Kotambi Stadium in Vadodara last night. In the next encounter, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the M. Chennaswamy Stadium in Bengaluru tomorrow. Next, we have from FIH Pro Hockey League, where the Indian men's team defeated reigning world champions Germany 1-0 at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar last night. India's Gurjan Singh scored the only goal of the match. On the other hand, the Indian women's team faced major defeat by Spain as they emerged victorious over India 1-0 at the same venue in Bhubaneswar yesterday. At last but not the least, in table tennis, Srija Akula started the day for India on a positive note as she claimed a straight game on the opening day of the Asian Cup tournament in Shenzhen, China yesterday. Srija defeated Qatar's Aya Mohammed 3-0 in her women's singles group match. Today she will face world number 1 Sun Yingsha of China in the second group match. With Sayukta Yadav, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का.
Yes, Manoj, let's begin with the news from Chennai. Yes. A Sri Lankan court has penalized 12 Rameshwaram fishermen with a penalty of Sri Lankan 50,000 rupees each, while two others have been sentenced to 18 months of imprisonment. 14 fishermen and their two mechanized trawlers were detained by the Sri Lankan Navy on 9th of February. The detained fishermen were booked on charges of trespassing, poaching and using banned fishing gear in Sri Lankan waters and were lodged in a Vavuniya prison after a court remanded them in judicial custody. As their judicial remand expired on Wednesday, the fishermen were produced before a Killinochi court where they were levied the penalty. India's deep ocean submersible Matsya 6000, which will take three scientists 6,000 meters deep into ocean, is closer to realization. The vehicle will undergo a shallow water demonstration at 500 meters depth at Kattupalli port near Chennai by the end of this year. Earlier this month, the vehicle successfully underwent wet tests, both unmanned and manned, to demonstrate its functionality. And Manoj, what's the buzz from Delhi?
Ji, Bharatiya Rashtriya Rajmarg Pradhikaran NHAI ने बुधवार से फास्टैग नियमों में बदलाव के कारण लेन देन में कमी आने के दावों का खंडन किया. NHAI ने एक बयान में कहा कि 28 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी परिपत्र का फास्टैग ग्राहक अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. परिपत्र का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फास्टैग लेनदेन वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर संसाधित हो ताकि ग्राहकों को विलंबित लेनदेन से परेशान न होना पड़े. हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में देश भर के आगंतुकों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं. अब तक मेले में 44 देशों के लगभग 650 विदेशी मेहमान आ चुके हैं. इस दौरान सभी विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति, कला और खान पान से रूबरू हो रहे हैं. हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने बताया कि विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं. इनमें विदेशी पर्यटकों के लिए खान पान, रहने, घूमने और गाइड की सुविधा शामिल है. श्री कुमार ने बताया कि मेले में विदेशी मेहमानों के लिए करीब 100 स्टॉल भी आरक्षित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा आगंतुक बिम्स्टेक के देशों और बेलारूस, कैमरून, इथोपिया, लेबनान और मिस्र जैसे देशों से है.
Yes, Manoj, you know, the Surajkund Mela is a big time tourist attraction for our country and beautiful ceramic, pottery, handmade products, you know, these are the major attractions of this Mela. Moving on further, news from Bengaluru, media advisor to Chief Minister in Karnataka, K.V. Prabhakar, has expressed a need to prevent misuse of Right to Information Act. He was addressing newly nominated information commissioners in a function organized by Karnataka Union of Working Journalists in Bengaluru yesterday. He urged upon the information commissioners to ensure social justice and equality while discharging their duties. He stressed that the right to information is a fundamental right and the information commissioners must safeguard it, pointing out at the instances of misusing the right to information and the growing incidence of murder of RTI activists. Mr. Prabhakar noted that all efforts should be made to strengthen the provisions of the Act. And Manoj, do you bring news from Mumbai now?
Ji, Sarabjit. Brihan Mumbai Nagar Nigam BMC ne pratishthit sairgah ke saath dainik bhari bheed ki suvidha ke liye Mumbai ke Marine Drive par roshni mein sudhar karne ka nirnay liya hai. BMC adhikari ke anusar agle mahine Air India Buildings and National Center for the Performing Arts NCPA तक 110 LED light fixture लगाए जाएंगे. Marine Drive शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले जल प्रपातों में से एक है, जो न केवल स्थानीय निवासियों को सुबह की सैर के लिए आकर्षित करता है, बल्कि हजारों पर्यटकों और उपनगरीय आगंतुकों को भी आकर्षित करता है. यहां लोग समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए आते हैं. हालांकि इस मार्ग पर मौजूदा स्ट्रीट लाइटें अपर्याप्त हैं, खासकर वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट मैच जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान भारी भीड़ आती है. ऐसे मामलों में बीएमसी वर्तमान में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी प्रकाश व्यवस्था स्थापित करती है. अधिकारी ने बताया कि बीएमसी अब सैरगाह के बगल में पेड़ों के नीचे स्थायी एलईडी फिक्स्चर लगाने की योजना बना रही है. इससे सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी. अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 17 लाख रुपए है, जिसमें सैरगाह के किनारे 55 पेड़ों के नीचे एलईडी फिक्स्चर स्थापित करना शामिल होगा. 30 से 40 वाट तक की ये लाइटें न केवल दृश्यता बढ़ाएंगी बल्कि क्षेत्र की सौंदर्य अपील में भी योगदान देगी. 1915 में निर्मित मरीन ड्राइव 20 फुट ऊंची दीवार के साथ लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है, जो इसे समुद्र से अलग करती है. हालांकि नई एलईडी लाइटें पूरे हिस्से को कवर नहीं करेंगी.
News now from Hyderabad. The Telangana State Road Transport Corporation has decided to provide a discount of 8 and 10% on its buses that are operating on Hyderabad-Vijayawada route to reduce financial burden on passengers who frequently travel. Road Transport Corporation officials said, since Hyderabad-Vijayawada route is witnessing heavy passenger traffic, particularly during weekends, it was decided to provide discounts on certain services to reduce financial burden on travelers.
Pashchim Bengal, Kolkata Samachar. एक राष्ट्र एक चुनाव से खर्च कम करने, समय बचाने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान IIEST शिवपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहुत से सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं. इन चुनावों में बहुत अधिक धन खर्च होता है. एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी कर्मचारियों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी. इससे कई चुनावों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी और सरकारी खजाने की भी बचत होगी. उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन एक ही चुनाव से ये समस्या समाप्त हो जाएगी. और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं. पहले दिल्ली की बात करते हैं. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ मध्यम बारिश होने के आसार हैं. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु के मौसम की खबरें जानते हैं सरबजीत से.
जी मनोज, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड अ पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर. द मिनिमम टेम्परेचर्स 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज. Bengaluru is expected to have missed the minimum temperature record at 17 degrees Celsius. Maximum may go up to 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. And Manoj, time now to move to the most interesting segment of the day.
Yes.
And Manoj, you know, in today's times, we've been, you know, very, very often talking about an inclusive society. In fact, many, many schemes have been afloat to bring almost everyone to the mainstream. And yes, listeners, today is World Day of Social Justice. It serves as a global call to action for addressing poverty, exclusion, and unemployment while promoting solidarity, harmony, and equality of opportunity within and between societies.
जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में अपने 62वें सत्र के दौरान स्थापित विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 के 63वें सत्र के बाद से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये उत्सव इस मान्यता से उपजा है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और बीच में शांति और सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है। ये दिन इस बात पर जोर देता है कि शांति, सुरक्षा और सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
And listeners, today is also World Anthropology Day, which is observed on the third Thursday in February to promote the field of anthropology and raise awareness about its significance in understanding human diversity, cultures and societies worldwide. Anthropology Day was established by the American Anthropological Association in 2015, and then, you know, later understanding its importance at the global level, this day's nomenclature was changed in the year 2016 to World Anthropology Day.
मानव विज्ञान मनुष्य, उनके संस्कृति और विकास का अध्ययन है। लेकिन मानव विज्ञान न केवल प्राचीन समाजों का अध्ययन है, बल्कि ये वर्तमान सामाजिक संरचनाओं से भी बहुत संबंधित है। ये समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्यों का अध्ययन करता है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन की विशाल विविधता अन्य प्राइमेट्स और वानरों के साथ संबंध में एक जैविक और आनुवांशिक इकाई के रूप में होमो सेपियंस का अध्ययन करता है और जैविक तथा सामाजिक विज्ञान के बीच एक सेतु बनाने में भी मदद करता है। और आज ही के दिन 1946 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया। 1847 में आज ही के दिन रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई।
1868, 20th February, a paper called Amrita Bazar Patrika was first published in undivided Bengal's Jessore district. And this paper earned sharp criticism of the British. And in fact, in the year 1878, the British enacted the Vernacular Press Act to curtail criticism of the government in the local language press. But one publication that refused to stop was the Amrita Bazar Patrika. The legendary Amrita Bazar Patrika and its journalists were at the forefront of India's struggle for independence and early proponents of the concept of press freedom. This year, 1872, the Metropolitan Museum of Art in New York City opened to the public, and it later became one of the foremost museums in the world. 1909, 20th February, Italian author Filippo Tommaso Marinetti coined the term futurism in the Parisian newspaper El Figaro, and 1935, Caroline Mikkelsen became the first woman to step a foot in Antarctica.
आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने के बारे में घोषणा की।
1962, 20th February, जॉन एच ग्लेन द जूनियर, द ओल्डेस्ट ऑफ सेवन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड बाय नासा फॉर प्रोजेक्ट मर्क्यूरी स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग, बिकेम ऑन दिस डे इन 1962 द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ, डूइंग सो थ्री टाइम्स।
आज ही के दिन 1965 में मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर पीके सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया। आज ही के दिन 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 23वां और 24वां राज्य के रूप में उद्घाटन हुआ।
1998 ऑन 20th फरवरी 15 ईयर ओल्ड तारा लिपिंस्की वन द गोल्ड मेडल इन विमेन्स फिगर स्केटिंग एट द ओलंपिक विंटर गेम्स इन नागानो जापान एंड बिकेम द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन हर स्पोर्ट।
आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। दूरदर्शन पर खेल चैनल भी शुरू हुआ। और अब बात करते हैं सरबजीत उन महान विभूतियों की जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
सो फर्स्ट इन द लिस्ट मनोज इज हरीशचंद्र सखाराम भतवदेकर, ऑल्सो नोन एज सेव दादा। टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। ही इज फॉन्डली रिमेम्बर्ड फॉर द फिल्म द रेस्लर्स, शॉट वे बैक इन 1899 ड्यूरिंग अ रेस्लिंग मैच बिटवीन द टू रेनाउंड रेस्लर्स ऑफ द टाइम, पंडिटा दादा एंड कृष्णा नवी एट द हैंगिंग गार्डन्स इन मुंबई। भतवदेकर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फैक्चुअल फिल्म।
आज जयंती है अभिनेता श्याम सुंदर चड्ढा की। उनका जन्म 20 फरवरी 1920 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। उन्हें श्याम के नाम से बेहतर जाना जाता है। वे हिंदी सिनेमा के अभिनेता थे। उन्होंने 1942 में अपना करियर शुरू किया। उनकी मुख्य फिल्में हैं आज और कल, डब्ल्यू जेड अहमद की मन की जीत, मजबूर, चांदनी रात आदि।
मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी हो।
नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टुडे टीवी राजू, composer, music composer who predominantly worked in Telugu cinema. We have this song for you.
जय कृष्ण मुकुंद मुरारी, जय कृष्ण मुकुंद मुरारी, जय गोविंद वृंदा विहारी, जय कृष्ण मुकुंद मुरारी।
आज अनु कपूर का जन्मदिवस है। वे एक भारतीय अभिनेता और प्रस्तुतकर्ता हैं। उनका जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ था।
हेलो हेलो, नो नो नो, सॉरी रॉन्ग नंबर, ये हमदर्द दवा खाना नहीं। अच्छा भैया, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ठीक 5:30 बजे दरवाजा खुलेगा, दिखाई कोई नहीं देगा, लेकिन कोई यानी कि मिस्टर इंडिया अंदर आएगा, कुर्सी अपने आप पीछे खिसकेगी, वो बैठ जाएगा और आवाज आएगी, हेलो मिस्टर गायतुंडे, कैसे हैं आप? मैं कहूंगा जी हेलो मिस्टर इंडिया, ये लीजिए सिगार, सिगार पीजिए, और फिर सिगार अपने आप जैसे हवा में उठेगा और फिर दुआ।
हेलो मिस्टर इंडिया।
आज अभिनेता और पूर्व मॉडल प्रियांशु चैटर्जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म 20 फरवरी 1973 को दिल्ली में हुआ है। वे हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2001 में तुम बिन से हिंदी फिल्म में पदार्पण किया। उनकी मुख्य फिल्में दिल का रिश्ता, राज, पिंजर, जूली, कोई मेरे दिल में है, भूतनाथ, बादशाहो और 12वीं फेल आदि हैं।
सर,
मेरी शादी का पहला इन्विटेशन। सर,
थैंक यू।
आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी।
सर, एक सवाल और पूछना था।
हाँ पूछो।
सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। कैसे बनूंगा सर?
चीटिंग छोड़नी होगी बस। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर।
जुगाड़ वाला?
यस सर।
सर
शाबाश, सर
शाबाश।
आज अमीन सयानी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1932 को बंबई में हुआ है। वे आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी के रूप में जाने जाते हैं।
बहनों और भाइयों, आज मैं गीतमाला की छाव में की शुरुआत एक ख्याली डॉक्टर और एक सचमुच का तंदुरुस्ती की दवाइयां बेचने वाला सेल्समैन बनकर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रातों में नींद नहीं आती, दिल में दर्द रहता है, खाने पीने में दिल नहीं लगता?
मोहब्बत का
Yes, indeed, with this great voice which has been touching the hearts of all radio lovers. Listeners, time to wind up the show. But you stay tuned in for the Hindi news followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.